हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 114। करण के अचानक बोलने पर शिविका ने मना करते हुए कहा, अरे एकदम अचानक से ये बात क्यों? और वो सिर्फ मेरा क्लाइंट है और कुछ भी नहीं। वैसे भी भूल जाओ, साहिल बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। अब उसका नाम लेकर मुझे और इरिटेट मत करो। शिविका की बात पर करण कन्फ्यूजन से घूरता हुआ उसकी तरफ देखा। करण ने कहा, इतना ही इरिटेटिंग है तो फिर क्यों उसको इतना मुंह लगाती हो? मुझे पता है बिजनेस रिलेशन है और क्लाइंट है, लेकिन फिर भी जितना जरूरी हो बस उतनी ही बातें करना। ये इस तरह सारी फरमाइश पूरी करना जरूरी है क्या? शिविका ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए समझाया, करण तुम्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम अभी नए हो, तुम्हें काम करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से इसमें हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 114। करण के अचानक बोलने पर शिविका ने मना करते हुए कहा, अरे एकदम अचानक से ये बात क्यों? और वो सिर्फ मेरा क्लाइंट है और कुछ भी नहीं। वैसे भी भूल जाओ, साहिल बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। अब उसका नाम लेकर मुझे और इरिटेट मत करो। शिविका की बात पर करण कन्फ्यूजन से घूरता हुआ उसकी तरफ देखा। करण ने कहा, इतना ही इरिटेटिंग है तो फिर क्यों उसको इतना मुंह लगाती हो? मुझे पता है बिजनेस रिलेशन है और क्लाइंट है, लेकिन फिर भी जितना जरूरी हो बस उतनी ही बातें करना। ये इस तरह सारी फरमाइश पूरी करना जरूरी है क्या? शिविका ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए समझाया, करण तुम्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम अभी नए हो, तुम्हें काम करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से इसमें हूँ। हमारे बिजनेस में ज्यादातर चीजें हमेशा हमारे मन से नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि काम है। करण ने सीधे सवाल करते हुए पूछा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं काम के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो वो काम के अलावा जो। अच्छा शिविका, एक बात बताओ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि काम के अलावा भी वो तुम्हारे आसपास रहने की कोशिश करता है? शिविका ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ मुझे समझ में आता है, वो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, और वैसे भी वो कोई पहला लड़का नहीं है जो मुझ पर ट्राई कर रहा है। मुझे तो अब तक इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, ऐसे लोगों से सामना होता रहता है, लेकिन जब तक कोई अपनी हद पार नहीं करता तब तक मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती और काम पर ही फोकस करती हूँ। करण गुस्से में बोला, अपने होने वाले हस्बैंड के सामने इतनी आसानी से ये बात कैसे बोल सकती हो तुम? शिविका ने मजाक के तौर पर कहा, अच्छा आसानी से नहीं तो फिर कैसे बोलूं? और होने वाले हस्बैंड, सीरियसली तुमने यहाँ तक सोच लिया है क्या? करण पहले की तरह सीरियस था। उसने पूछा, क्यों तुमने नहीं सोचा? तुम्हारा अभी भी पीछे हटने का इरादा है क्या? शिविका एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे तो डैड पहले ही इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर चुके हैं, और अब तो तुम्हारी वो काव्या भी जब देखो करण करण तुम्हारे नाम की ही रट लगाती रहती है। पता नहीं क्या जादू किया है तुम्हें। मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई चांस है पीछे हटने का, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। करण ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन फिर अपनी बात बदली, नहीं मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी ऑप्शन तो मेरे पास भी नहीं है। तुम्हारे पापा से बात हो चुकी है इस बारे में, और जो लोन मेरे पापा ने लिया है वो तो वैसे भी हमारी शादी के बाद ही माफ होगा, इसलिए मैं भी पीछे नहीं हट सकता। इसके अलावा मेरे घर वाले भी तैयारियां कर रहे हैं शादी की। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी शादी के लिए वो इस बात को वजह नहीं मानना चाहते थे, और इसीलिए अलग अलग बहाने बना रहे थे। इस वक्त तो उन दोनों में से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। करण की बात पर शिविका ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा और अगर लोन नहीं होता तो क्या तुम पीछे हट जाते? करण ने उसकी बात सुनी, लेकिन अनजान बनते हुए पूछा, क्या कुछ कहा क्या तुमने? शिविका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं कुछ भी नहीं। शिविका की बात सुनकर करण थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि शिविका ने इतनी धीमी आवाज में ये सवाल क्यों किया। क्या वो उनके रिश्ते को लेकर अभी भी कंफ्यूज है, और क्या वो ये शादी सिर्फ फैमिली प्रेशर में आकर कर रही है जैसा उसने कहा? उनका रिश्ता भले ही परिवार के दबाव की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन अब तक वो दोनों इस रिश्ते में काफी ज्यादा ग्रो कर चुके थे। उस जबरदस्ती की सगाई के बाद से तो बहुत ज्यादा ही आगे आ चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों दोनों ही इस बारे में सीधे तौर पर बात करना या डिस्कशन करना पसंद नहीं करते और हमेशा अपनी शादी को लेकर हंसी मजाक करते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बारे में बात करते हैं। कभी भी सीधे वो दोनों टॉपिक पर बात नहीं करते। करण के पास कई सारी इनसिक्योरिटीज हैं और साथ ही उसका मिडिल क्लास होना और इसके अलावा वो शिविका के लिए उसके अंडर ही काम करता है। इस बात से वो थोड़ा बहुत ऑफेंड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अच्छे से मैनेज करता है। उसे लगता है कि शिविका उससे कहीं ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है, लेकिन फिर भी किसी और के साथ वो शिविका को इमेजिन भी नहीं कर पाता। उनका बॉस और एम्प्लॉई वाला रिश्ता जाने कब का इतना पीछे छूट चुका है कि उन दोनों को ही नहीं पता। शिविका भी इस बारे में सोच रही है। उसे लगता है कि करण शादी सिर्फ लोन की वजह से कर रहा है और अगर उसकी ये मजबूरी नहीं होती तो शायद वो शादी के लिए राजी ना होता। उसे भी लगता है कि उसके जैसी एरोगेंट और बॉस की लड़की से भला कौन लड़का शादी करना चाहेगा और कौन होगा जो उसके जैसी अमीर और सक्सेसफुल लड़की से शादी करना चाहेगा। ये सोचकर वो दोनों काफी ज्यादा मायूस फील कर रहे थे। बेबसी से उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी वक्त शिविका ने कार रोक दी। उन दोनों की आपस में नजरें मिली, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला और करण तुरंत कार से निकलकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ आज ऋषभ की तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले काफी दिनों से वो ध्यान से पढ़ाई कर रहा था और उसने कोई पार्टी नहीं की थी। इस वजह से उसने कुछ भी ड्रिंक नहीं किया था, तो उसे कुछ अनईजी फील हो रहा था और उसका ड्रिंक करने का मन भी हो रहा था, लेकिन उसके पापा और बहन की वजह से वो कभी भी घर में ड्रिंक नहीं करता, इसके लिए उसे बाहर जाना ही होता है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपना वॉलेट और मोबाइल फोन लेते हुए अपनी जगह से उठा। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ डाली और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी रुककर उसने दोबारा टाइम देखा। शाम के 6 बज रहे थे। इस वक्त अगर वो बाहर जाता तो समर यहाँ आकर उसका इंतजार करता और वो नहीं चाहता था कि समर यहाँ अकेला बैठे और उसका इंतजार करे, लेकिन साथ ही वो अपने लिए ड्रिंक लेने बाहर भी जाना चाहता था। उसे इस वक्त बहुत जरूरी लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो जाकर जल्दी से वापस आ जाएगा और ये सोचते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। वहाँ बंगले के पार्किंग एरिया में कार पहले से ही रेडी थी। वो कार में बैठकर अपने घर से बाहर निकला। उसके पापा ने खिड़की से बाहर देखते हुए उसे जाते हुए नोटिस कर लिया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो जरूर किसी उल्टे सीधे काम के लिए ही इस वक्त घर से बाहर जा रहा है, लेकिन वो खुद व्हीलचेयर पर है, इसलिए सिर्फ बेबसी से उसे जाते हुए देख सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो कुछ बोलते तब भी ऋषभ उनकी बात कभी नहीं सुनता। कुछ देर बाद ऋषभ को पता नहीं चला कि बाहर उसे इतनी ज्यादा देर हो गई। जब वो वापस आया तो 7 बज चुके थे और समर भी उसका इंतजार करके थक चुका था, इसलिए वो वहाँ से वापस जा रहा था, इसलिए दरवाजे पर ही उसे मिल गया। दरवाजे पर समर से टकराते ही ऋषभ ने मुस्कुराकर पूछा, समर कहाँ जा रहे हो और हमारी आज की क्लास उसका क्या हुआ? ऋषभ ने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी, वो अच्छे मूड में था, इसलिए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए ये बात पूछ रहा था। समर थोड़ा सा नाराज था क्योंकि वो इतनी देर से यहाँ उसका इंतजार कर रहा था और वो उसे पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन वो खुद गायब था, वो भी उसे बिना बताए। इसलिए ऋषभ के सवाल पर समर अपने दोनों हाथ सामने बांधकर उसकी तरफ देखते हुए नाराजगी से बोला, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो या फिर मुझे तुमसे पूछना चाहिए? और वैसे भी अगर तुम्हें सच में पढ़ना होता तो फिर तुम इस तरह से गायब नहीं होते, और अगर कहीं इतना ही जरूरी काम से जाना था तो कम से कम मुझे एक मैसेज कर देते।
समर की शिकायतें सुनकर ऋषभ को बुरा लगा। वो अपना सिर नीचे करके तुरंत माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, तुम काफी देर से वेट कर रहे थे क्या? बट वो मेरा मतलब है, जरूरी काम से ही गया था, बस मुझे पता नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन वो ट्रैफिक में। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर बैग उठाकर दिखाया। उसे देखकर समर का गुस्सा और भी बढ़ गया। समर की नज़र जैसे ही उस बैग के अंदर रखी आधी खाली बियर की बोतल पर पड़ी, वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से बोला, रियली, तुम बियर लेने गए थे और ये ज्यादा जरूरी है पढ़ाई से भी ज्यादा, मुझसे भी? मेरा मतलब है, तुम्हें ड्रिंक करने की क्या जरूरत है ऋषभ? क्यों खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हो? और वैसे भी अगर तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो तो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इतना बोलते हुए समर उसके साइड से निकलकर जाने लगा। ऋषभ तुरंत अपने हाथ फैलाकर उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ऋषभ ने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नो समर, नो, एंड प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, यू आर माई लास्ट होप फॉर दिस, और मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, सॉरी मैंने तुम्हें इतनी देर वेट कराया, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं पढ़ाई को लेकर सीरियस हूँ और मुझे इस साल पास करना है, प्लीज डोंट लीव मी। ये सब बोलते हुए ऋषभ की आंखों में पछतावे आ गए। वो ना चाहते हुए भी किसी के सामने खुद को इमोशनल नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इस वक्त समर के सामने वो थोड़ा सा भी रो रहा है और उसने समर को रोकने के लिए उसका हाथ भी पकड़ लिया है। समर ने गुस्से भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक ऋषभ को देखते हुए कहा, फर्स्ट यू लीव माई हैंड, और अगर तुम इतना ही सीरियस होते ना तो तुम्हारे हाथ में बुक या नोट्स होते, ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक नहीं। समर की बात सुनकर ऋषभ बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा पेपर बैग साइड में रख दिया, लेकिन अपनी सफाई में वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से उसे एक जानी पहचानी गहरी आवाज सुनाई दी। सही कह रहा है वो, जाने दो उसे ऋषभ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किस घर में शराब लेकर आने की? क्रमशः